ये एक अलमिया है कि ये प्रोग्राम आप और मैं यहाँ बैठकर बिला खौफ व खतर कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान में ये प्रोग्राम करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मगर ये प्रोग्राम हम ऑस्ट्रेलिया में गैर मुस्लिम मुल्क में कर सकते हैं, यानी इस माशरे को जिसको हम अमूमी तौर पर हमारा माशरा कहता है ये आलम कुफर है। मैं नहीं कहता, मैं जज नहीं कर रहा इस माशरे को, ये आलम कुफर है, वो खुदा ही जानता है। तो अब हम ये भी देखते हैं कि ये माशरा सरासर बुनियादी अखलाकियात पर खड़ा हुआ है। मज़हब का यहाँ पर रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ हर शख्स को आज़ादी है मज़हबी। अगर सिर्फ और सिर्फ बुनियादी अखलाकियात इतने गैर मामूली नतज दे सकती है गैर मुस्लिम मुल्कों में जहाँ पर हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं बिला खौफ व खतर, तो फिर सूरह बकरे की जो आयत है इसमें खुदा ने मेंशन किया है कि बेशक जो यहूदी हुआ, साबी हुआ और नसरानी हुआ, खुदा और योम आखिर पर ईमान लाया, उसके लिए क़यामत के दिन मेरे पास बहुत बड़ा अजर है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ बुनियादी अखलाकियात इतना गैर मामूली माहौल पैदा कर सकती है, तो फिर नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात जिसका हम मुशाहिदा करते हैं अपने मुल्क में अमूमी तौर पर लोग, मतलब एक बड़ी तादाद उसको फॉलो करती है, अगर नमाज, हज, रोज़ा और ज़कात वो माहौल पैदा करने में नाकाम है और बुनियादी अखलाकियात जिसका ज़हूर हम यहाँ देख रहे हैं, वो यहाँ पर हम ये बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है? क्या ये अच्छा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ बुनियादी अखलाकियात पर ही लोगों का आखिरी इम्तहान लिया जाता?
ये जिस अलमिये की आपने निशानदेही की है, मैं तो चूँकि ख़ुद उसका शिकार हो चुका हूँ, तो मेरे जज्बात भी वही होने चाहिए जो आपके हैं। कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि आप शाइस्तगी से अपनी बात बयान करें, इख्तलाफ़ करें, किसी नुक्ता नज़र की तब्लीग या इशात का काम कर सकें। पहले ज़मानों में एक लंबा अरसा हुकूमतें तशद्दुद करती थी, जबर करती थी, प्रोसिक्यूशन होती थी, कबीलों की तरफ से होती थी। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह पैदा हो गए हैं जिनकी तरफ से वही सूरत हाल है। ये आपके इलम में है कि पाकिस्तान में 30-35 साल तक मैं एक हफ्तावार इस तरह का इज्तिमा किया करता था जिसमें लोग आते थे, वो मुझसे मिलते थे, जो उन्होंने पूछना होता था पूछते थे, उसको बंद करना पड़ गया। मेरे करीबी 3 दोस्तों को निशाना बना लिया गया, इनमें से 2 शहीद हो गए, 2 उनमें से एक अभी भी उसके नताइज भुगत रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप में इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे यहाँ ये चीज़ हुई है, लेकिन इसका इससे क्या ताल्लुक़ है? देखिए, ये जो माशरा जिस पे आप बैठे हुए हैं ये एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है। आप इसको मत फरामोश कीजिए कि अभी 1945 में इन्हीं कौमों ने, दुनिया की मुतमद्दन तरीन कौमें जो कहलाती हैं, 5 करोड़ आदमियों को मारा है। दूसरी जंग अजीम को हुए अभी एक सदी भी मुकम्मल नहीं हुई। तो बड़े तजर्बात से इन लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। इसका ताल्लुक ना बुनियादी अखलाकियात से है, ना समाजी अखलाकियात से है। कौमें मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रने के बाद सबक सीखती हैं, बदकिस्मती से हमने नहीं सीखा, और इन्होंने उन दोनों जंगों से ये सबक सीखा कि दुनिया को अमन और आज़ादी देनी चाहिए। अमन आज़ादी 2 बुनियादी कदरें बन गई इस सोसाइटी में। बहुत से मुफक्किरीन पैदा हुए जिन्होंने इन कदरों पर बड़ा आला लिटरेचर तसनीफ़ किया, कौम की तामीर की, उन्होंने लोगों के जहनों की तथहीर करने की कोशिश की, बड़ी अकेडमीज़ वजूद में आईं, बहुत सी तहरीकें चलीं। आप अगर मगरब की तारीख पढ़ें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ्यूडल सिस्टम से जब ये सरमायादाराना मईशत में दाखिल हुए, उस वक्त इसी माशरे का कैसा मातम किया कार्ल मार्क्स ने डास कैपिटल में, और फिर पेशींदगोई की कि अब कोई चारा इसके सिवा नहीं कि दुनिया भर के मज़दूर उठें। आपको मालूम है कि सबसे पहला जो अलमनाक वाक़या हुआ था वो शिकागो में हुआ था, जिसको हम यौम मई की सूरत पे मनाते हैं। तो इस सोसाइटी का मामला ये नहीं है कि कहीं बुनियादी अखलाकियात इसको इल्हाम हो गई और ये ठीक हो गई है। बेशुमार तजुर्बात के बाद और बहुत खून बहाने के बाद इन्होंने सबक सीख लिए, हमने बदकिस्मती से वो सबक नहीं सीखा। शायद इतना बड़ा कोई शौक भी हमको नहीं लगा। बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि अखलाकियात क्या चीज़ है, तो अखलाकियात जो पिक और चूज़ के तरीके पर नहीं होती। अखलाकियात का जो शऊर हमें दिया गया है वो क्या चीज़ है, वो असल में हमारे रिश्तों के साथ मुतल्लक होती है। तो मेरा एक रिश्ता मेरी माँ के साथ है, मेरे बाप के साथ है, एक रिश्ता मेरा माशरे के साथ है। ये जो रिश्ते हैं ये मुझसे तकाज़ा करते हैं, और ये तकाज़ा मज़हब भी करता है, इंसान का वजूद भी करता है, उसकी अकल भी करती है, उसका इलम भी करता है कि मिसाल के तौर पर मैं किसी को धोखा ना दूँ, किसी के साथ फ्रेब ना करूँ, मैं कम ना तोलूँ, मैं मिलावट ना करूँ। जिस तरह ये तकाज़ा करता है, इसी तरह ये भी तकाज़ा करता है कि मैं माँ बाप का हक अदा करूँ। उन्होंने मुझको पाला है, तो मेरी माँ अगर मुझसे कहती है कि बेटा तुम मुलाजमत पे जाने से पहले, कारोबार में जाने से पहले 10 मिनट मेरे पास बैठ जाओ آتے ہوئے مجھ سے مل لیا کرو تو میں اس کو احترام کی نظر سے دیکھوں اور یہ کروں. ان رشتوں میں ایک بہت بڑا رشتہ خدا کا رشتہ بھی ہے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے امن کے حوالے سے, مذہب اس کو دیکھ رہا ہے رشتوں کے حوالے سے. ساری سوسائٹی میں امن ہو اور میں نے اپنی ماں کو کسی ڈرم میں ڈال دیا ہو تو میں اخلاقی لحاظ سے اچھا ہوں گا. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ سارے اخلاقی حقوق ادا کریں, اپنے رب کے بھی, اپنے والدین کے بھی, اپنے معاشرے کے بھی, اپنی سوسائٹی کے بھی اور پوری دنیا کے بھی. تو ان کے توازن ہی کا نام اصل دین ہے. آپ ایک طرف اندھیرا کر کے اور دوسری طرف روشنی کر کے داد نہیں لے سکتے. اس وجہ سے عبادات کیا ہے؟ عبادات میری ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ جایا کرو, میرے پروردگار نے کہا ہے کہ 5 منٹ کے لیے میری بارگاہ میں آیا کرو. یہ معمولی بات آپ کو لگتی ہے؟